ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना।
प्रसाद जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
धन्यवाद आपका।
कल निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा की गई, तो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते ही इन दोनों राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये आदर्श आचार संहिता क्या है और कब तक लगी रहती है और इसके मुख्य नियम क्या क्या है।
आदर्श आचार संहिता जो है, जिस क्षण से चुनाव आयोग ये घोषणा कर देती है कि राज्य में चुनाव का पूरा शेड्यूल तय करती है और अनाउंस कर देती है, उसी क्षण से ये लागू हो जाता है। और इसके पीछे मूलतः एक कारण यही है कि किसी भी जो भी दल की सरकार हो जिस राज्य में, उनको कोई ज्यादा इस तरह से कोई कार्य ना करे जिसका उनको सीधा सीधा जनता को अपनी तरफ खींचने का काम हो, क्योंकि सरकार में रहने के साथ उनको ये फायदा मिल सकता है। तो इसमें और उसके बाद चुनाव आयोग के पास ये भी अधिकार रहता है कि वहाँ की जो पूरा प्रशासन का तंत्र है, मतलब वहाँ के जो अफसर हैं, वो उनको रिपोर्ट करेंगे ताकि सरकार की दखल ना हो किसी भी तरह से, क्योंकि चुनाव आयोग का एकमात्र उद्देश्य होता है कि चुनाव जो निष्पक्ष हो और स्वतंत्र रूप से हो और जनता जो है अपने स्वेच्छा से जाके पोलिंग बूथ में अपने मत का अधिकार करे। तो इसके पीछे एक तो ये है, और दूसरा ये जब तक चुनाव के रिजल्ट परिणाम नहीं आ जाते और जब सदन बनने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक ये आचार संहिता लगी रहती है। इस बीच में एक प्रावधान जरूर है कि अगर राज्य में कोई इस तरह के कोई हो कार्य है जिसमें कोई बहुत जरूरी कार्य होना हो, तो चुनाव आयोग को सिफारिश या दरखास्त दे सकती है, रिक्वेस्ट डाल सकती है राज्य की सरकार। फर्ज कीजिए कोई राज्य में कोई आपदा आ गई या कोई इस तरह से हो कि राज्य सरकार को कोई विशेष कदम उठाने की जरूरत पड़े जिसमें वित्तीय सहायता हो या बहुत काम सारी चीजें आती है या कोई फैसला लेना हो, ताकि इसका ये होता है कि कोई ऐसा कार्य ना रुके जो कि जनता के हित में हो लेकिन उसका फायदा किसी को ना मिले, उसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये मूलतः इसके पीछे कारण यही है कि निष्पक्ष हो चुनाव और किसी भी दल को, खासकर वो दल जो सत्ता में बैठी है, उसको फायदा ना मिले।
चुनावों के ऐलान होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है जम्मू और कश्मीर, और जो कि केंद्र शासित राज्य है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि धारा 370 के निष्प्रभावी होने के बाद, बसाती परिसीमन के बाद, ये पहली बार वहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं?
जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और चूंकि सारा जिसे कहते हैं पिछले 5 साल से, जब से 2019 में धारा 370 अनुच्छेद को हटाया गया, उसके बाद से सरकार ने हमेशा कहा कि उचित वक्त पे वो जरूर इस तरह की कार्रवाई करेगी ताकि वहां पे जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सके। याद हो कि 2022 में परिसीमन जिसका आपने जिक्र किया था वो भी हुआ है। तो चूंकि असेंबली पहले जो थी जम्मू कश्मीर असेंबली वहां के राज्य की थी, लेकिन चूंकि राज्य में अब वो हो गया कि एक तो यूनियन टेरेटरी उसको बनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरेटरी और लद्दाख जो है अलग हो गया है, तो इसलिए यहाँ के परिसीमन के बाद 90 सीटें बनाई गई हैं। पहले अगर याद हो कि 97 सीटें होती थी जम्मू कश्मीर स्टेट असेंबली की, इसमें 4 अगर हटा दें जो कि लद्दाख में है, तो पुराने 2014 के आंकड़े का देखेंगे तो 83 असेंबली थी, लेकिन अब परिसीमन के बाद 7 और जोड़ के इस वक्त ये 90 पे है, जिसके सितम्बर माह में 18 को, 25 को और अक्टूबर 1 को राज्य के लोग जो है अपने मत का अधिकार करेंगे।
और साथ ही प्रसाद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की सीटें जो हैं 114 हैं, लेकिन चुनाव जो है सिर्फ 90 पर कराया जा रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है?
अगर आपको याद हो जो मैंने आपको 57 का आंकड़ा दिया था, उसमें भी कुछ सीटें थे जो हम 5 अधिकृत कश्मीर हैं उनके लोगों के लिए हमने अपने पुराने असेंबली में भी सीटें रखी थी, और ये भी उसी तहत में रखी जाती है क्योंकि वो हमारा अभिन्न अंग है भारत का, और इसलिए उन लोगों के लिए वो सीटें छोड़ के रखा जाता है। जी,
जम्मू कश्मीर के इस बार होने वाले चुनाव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई, ये कितना बड़ा कदम है और आप इसे कितना महत्वपूर्ण देखते हैं?
जी, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि वहाँ पे जनजाति तो है ही, लेकिन पहले इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था, चूंकि धारा 370 लगा हुआ था, तो जम्मू कश्मीर राज्य के पास अपने कुछ विशेष अधिकार थे, वो उसके तहत इस तरह के परिसीमन नहीं करते थे। और आपको याद हो कि 370 से पहले महिलाओं के लिए वहाँ पे काफी कुछ संविधान उनके सुविधाएं नहीं थी, वे सब में भी बदलाव आया है, तो इसलिए वहाँ पे जो जनजाति है उनके लिए भी 7 सीटें आरक्षित की गई हैं परिसीमन के बाद। तो जाहिर है कि अब जैसे पूरे देश में बात चलती है कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे जनजाति लोग हैं वो भी राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़े, और राजनीति और पॉलिटिकल पावर एक बहुत बड़ा माध्यम होता है।
आपसे जानना चाहेंगे प्रसाद जी कि हरियाणा में चुनाव को देखें तो एक ही चरण में चुनाव होना है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस चुनाव को तीन चरणों में रखा गया है, तो इसे आप कैसे देखते हैं?
देखिए, हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक कठिन इलाका है, एक तो पहाड़ी इलाका है पहली बात, दूसरा ये है कि वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो विशेष है और कई बार हमने देखा है, हाल फिलहाल में भी है, वहाँ पे आतंकी हमले होते रहे। हम सब जानते हैं 1980 के दशक से वहाँ पे जो है आतंकवाद समस्या रही है, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा कर्मी हमारे जहाँ मुस्तैद हैं और बहुत कठिन परिश्रम करके उन्होंने स्थिति को संभाल के रखा है। तो ऐसे में ये सरकार के दायित्व होता है और इसीलिए हम जानते हैं कि चुनाव आयोग जो है चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्रालय से परामर्श करता है, ताकि गृह मंत्रालय और राज्य की जो पुलिस है, इस वक्त क्योंकि राज्य की अब तो राज्य नहीं रहा तो यूनियन टेरिटरी है तो सीधा केंद्र के तहत है, तो सुरक्षा बल का मुहैया कराना, ताकि चुनाव आयोग को जितनी सुरक्षा बल चाहिए वो व्यापक तौर से मिले। और हम सब जानते हैं कि हाल फिलहाल के दिनों में भी कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें कि आतंकवादियों को लेकर घुसपैठ की बात हुई है, तो कुछ न कुछ इस तरह से है। तो चुनाव आयोग के लिए बहुत सुनिश्चित करना है कि चुनाव भयमुक्त वातावरण में कराएं, और भयमुक्त वातावरण के लिए बहुत जरूरी है। और कल अगर आप याद होगा जब चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये बात रखी थी कि सुरक्षा को लेकर विशेष कदम उठाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एक बात का और जिक्र किया था कि चुनाव में भाग लेने के लिए वहां पे जो अनेक सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की थी कि भाई जो चुनाव में आएंगे प्रतिद्वंदी उनको जो है सुरक्षा व्यापक और उनकी सुरक्षा पर्याप्त हो। तो मेरे ख्याल से इस दृष्टिकोण से देखें तो तीन चरणों में बांटा गया है।
और हाल ही में प्रसाद जी अभी लोकसभा के चुनाव हुए तो जम्मू कश्मीर में पिछले तीन दशकों में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट देखा गया, तकरीबन 58% से ऊपर, तो इस पे आपकी क्या राय है?
नहीं, ये देखिए दो चीज दर्शाता है, एक तो लोगों का सबसे बड़ा चीज जो है भयमुक्त वातावरण जो मिले ताकि बिना किसी डर के आप अपनी बात जाके रखें, और जो उत्साह जो हमने लोकसभा के चुनाव में देखा है और जिस तरह के परिणाम निकले उससे दर्शाते हैं कि वहाँ के जो व्यक्ति स्थानीय लोग हैं उनकी अपनी मंशाएं हैं और उस मंशा को चुनाव के जरिए रखें। और शायद ये एक बहुत ही 2019 का जब परिस्थिति जब बात हुई थी जब 370 हटाई गई थी तो तमाम सारी बातें वहां से निकल के आ रही थी, तो मेरे ख्याल से वो सब नकारी गई एक तरह से, और जो परिणाम भी आए और चुनाव हुआ तो शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। और अपेक्षा यही है कि आने वाले जो असेंबली चुनाव हैं तीन चरणों में वे भी उसी तर्ज पे चलेंगे और लोगों का जन भागीदारी शायद इससे ज्यादा रहे, ऐसी सब अपेक्षा रखते हैं।
और जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसमें तकरीबन 40 लाख से ज्यादा महिलाएं मतदाता हैं और 20 लाख से ज्यादा यंग जो है युवा जो मतदाता हैं वो हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, इसे दो तीन चुनाव कीजिए या अगले अलग अलग जो हमारे राज्यों में चुनाव है तो ये देखा गया है कि पिछले दशक से महिलाओं का एक तो बढ़ चढ़ के भागीदारी, वे खुद निकल के आए, घर से बाहर आए और जाके वोट करती है, और ये एक वातावरण जो पहले होता था कि घर की महिलाएं या तो वोट करने नहीं जाती थी या वोट भी करती थी तो घर के पुरुष प्रधान जो वो लोग जैसे कहते थे, लेकिन अब वो परिवर्तन आ रहा है तो समाज में जो बदलाव है वो दर्शाता है। एक दूसरा ये है कि युवा वर्ग, भारत एक युवा देश है, हम मानते हैं कि 35 साल के जो नीचे वर्ग है हमारा वो कम से कम 50% से ज्यादा युवा है, और ऐसे में 18 साल के बाद जो जुड़ते हैं उनका जो है अलग ही जोश रहता है, और खासकर पहली मर्तबा वोटर्स को तो बहुत ज्यादा, चाहे वो पिछले लोकसभा के दो चुनाव तीन चुनाव देख लीजिएगा और उसके बाद कई सारे विधानसभा के जो चुनाव हैं, युवा आगे आता है क्योंकि युवा चाहता है बदलाव, और बदलाव का तरीका उनके पास यही है कि अपना वोट का प्रयोग करें और जिसको वो चाहें उसको वोट डालें ताकि उसके जरिए वो अपने राज्य में अपने देश में बदलाव की तरफ बढ़े।
और अब अगर हरियाणा की बात करें तो क्या आप प्रमुख मुद्दे देखते हैं इस चुनाव को चलते हैं?
देखिए, हरियाणा की स्थिति काफी अलग है, अलग इसलिए कि जम्मू कश्मीर से कोई तुलना भी नहीं कर सकते, लेकिन वो क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो बात है हमने रखी, लेकिन हरियाणा में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले तो 5 साल वो खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अगले 5 साल जो है उनके यहाँ मिली जुली सरकार रही। अगर आप लोकसभा के चुनाव देखें पिछले 2024 के जो मई जून में हमारे परिणाम आए उसके बाद
जी,
तो उसमें यह था कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में कांग्रेस 5 सीटें लेकिन, और जबकि 2014 में कांग्रेस बिल्कुल शून्य पे आ गई थी। तो ऐसे में बदलाव का संकेत है क्योंकि लोकसभा के चुनाव के 6-4 महीने बाद राज्य के लोग अपने मत का अधिकार फिर से करेंगे अपनी राज्य की सरकार के गठन के लिए। और राज्य में जो परिस्थिति थी शायद उसी वजह से हमने देखा कि पिछले कुछ महीने पहले लोकसभा से ठीक पहले मुख्यमंत्री का अदला बदला हुई, क्योंकि कांग्रेस जो है पिछले 10 साल से विपक्ष में है तो अपनी तरफ से प्रबल दावेदारी पेश करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वो कोशिश करेगी हराने की, उनका ये प्रयास रहता है और हर राजनीतिक पार्टी का यही प्रयास रहता है विपक्ष में अपना वक्त बिताने के बाद कहीं ना कहीं सत्ता में अपना पैंट बनाए।
लगभग 2 करोड़ मतदाता हरियाणा में है और लगभग 90 लाख से ज्यादा जो है महिलाएं हैं, तो कितना अहम होगा महिलाओं की भूमिका इस चुनाव में?
देश में परिस्थिति बदली और काफी कुछ बदलाव आया, सोच में भी बदलाव आया और महिलाओं ने कई जगह दर्शाया है कि वो इंडिपेंडेंट सोचते हैं, अपने हिसाब से अपने हित के रक्षा करने के लिए वह घर से बाहर निकल के मतदान केंद्र जाते हैं और अपने मत का अधिकार प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि एक जमाने में था कि घर का पुरुष जो फैसला कर दे और उसी तरह चल पड़ती थी, लेकिन अब इस चीज में बदलाव आई है। सोच के बदलाव के पीछे 2 कारण मैं एक समझता हूँ, हमारे यहाँ जो शिक्षा बढ़ी है और जो हमारे यहाँ महिलाओं को खासकर हमारे यहाँ जो गर्ल चाइल्ड को हमने काफी प्रोत्साहन दिया कि वो खुद पढ़े, तो जब ये 18 वर्ष के आसपास पहुंचते हैं तो उनकी अपनी सोच विकसित होती है, वो निष्पक्ष हो सकते हैं, अपने हित की सोच सकते हैं, तो उस हित का प्रयोग करने वो खुद बाहर निकल के जाते हैं। तो इसलिए महिलाएं और खासकर युवा वर्ग दोनों, अगर महिलाएं में जो युवा है उनमें भी काफी फर्क है और इसलिए कई चुनाव में जो बाद में अगर आंकलन होते हैं जो सर्वेस के बाद परिणाम के बाद जो काफी सारे एनालिसिस करते हैं उसमें देखा गया कि महिला वोटरों ने काफी राज्यों में और केंद्र में भी सरकार को गठन करने में उनका काफी बड़ा योगदान रहा है।
और अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और कितना अलग है कि लोकसभा चुनाव में जब एक मतदाता मतदान करने जाता है और अब कुछ ही समय के बाद अब फिर विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, तो इन दोनों चुनावों में मतदाता की मानसिकता में क्या फर्क देखने को मिलता है?
जी, सबसे बड़ी तो बात यह है कि जब लोकसभा में चुनते हैं सबको पता है हम राष्ट्र के लिए सरकार चुन रहे हैं, देश के लिए सरकार चुन रहे हैं, केंद्र में सरकार के गठन हो रहा है जो कि राष्ट्रव्यापी नीतियां बनेंगे केंद्र में, इसलिए जो वहां की सोच है वो बदल जाती है जब आप राज्यों के चुनाव में है, कि राज्यों के चुनाव में सीधा सीधा जो मुद्दे उठते हैं जो वहां पे समस्याएं होती है स्थानीय होती है, वो स्थानीय मुद्दे स्थानीय समस्याएं हावी होती है और जो पार्टी कोशिश करती है कि उन मुद्दों को या तो सुलझाए या उन मुद्दों को उजागर करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें कि हम ये स्थिति है आपकी इसका निदान पहुंचाएंगे, ये हमारे सामने का प्लान है, ये हमारा कार्यक्रम होगा, तो उसको देखकर लोग अपने हित के हिसाब से मत का प्रयोग करते हैं। तो राज्यों की परिस्थिति अलग होती है और राज्य की से मैंने कहा स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, स्थानीय मुद्दे हमेशा प्रांतीय चुनाव में परिणाम पे फर्क डालता है।
और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और आता है कि दोनों ही राज्यों में, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, दोनों जगह पर फर्स्ट टाइम वोटर जो पहली बार एक मतदाता जो मतदान करने जा रहे हैं स्पेशली युवा हैं सारे, तो उनकी क्या मानसिकता रहने वाली है, उस पर आपके क्या विचार हैं?
ये इसमें तो एक तो स्पष्ट है युवा है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है और उनको लगता है कि हमारा पूरा भविष्य हमारे सामने, 18 साल का जो वोटर जाएगा तो उसके पीछे तो आगे उसके सामने तो पूरी उनकी जिंदगी पड़ी है, उनका पूरा करियर पड़ा है, तो वो उनको जैसे मैंने कहा कि अब पढ़ा लिखा वर्ग है वो समझता है और आज के जमाने में जबकि हम वैश्वीकरण जिसे कहते हैं ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है, सबके हाथ में आजकल एक्सेस है, तमाम सारी दुनिया में क्या चीज हो रही है पल पल से अवगत रहते हैं, तो ऐसे में सजग होता है, समझता है और अपने हित की तरफ देखता है और अपना भविष्य की ओर देखते हैं कौन है जो हमारे भविष्य को और उज्जवल बना सके और कौन इस तरह की आगे बढ़ा सके। तो जिस तरह से युवा वर्ग जैसे है और जैसे हमारे देश में हम मानते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं डेमोग्राफी डिविडेंट है हमारे पास, 50% से ज्यादा हमारे पास युवा वर्ग है, तो ऐसे में क्या कार्यक्रम होंगी, क्या नीतियां होंगी, किस तरह से कार्यकुशलता में प्रोत्साहन मिलेगा, क्या नए नए अवसर प्रदान होंगे, ये सब चीज तय करती है युवा मतदाता को। हर पार्टी इसलिए कोशिश करती है युवा मतदाता को अपनी तरफ लुभाने के लिए।
केवी प्रसाद जी, आपका कार्यक्रम में आने के लिए और चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।